नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली के नेताओं ने हमास के इसराइल पर किए गए हमलों की निंदा की। हमले में मरने वालों की संख्या 1500 हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन G20 की FMCBG के साथ ही विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए आज मोरक्को के मराकेश रवाना। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में अलशीपोड़ा में एक मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज तेलंगाना में चुनाव अभियान की शुरूआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एशियाई खेलों में शामिल खिलाड़ियों से आज नई दिल्ली में बातचीत करेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। और ICC क्रिकेट विश्व कप में हैदराबाद में न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड्स को 99 रन से हराया। धर्मशाला में आज इंग्लैंड का सामना बांग्लादेश से तथा हैदराबाद में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर इसराइल पर आतंकी समूह हमास के अचानक हमलों की निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने संयुक्त बयान में कहा कि हमास के आतंकी कार्रवाई का कोई न्यायिक औचित्य नहीं है। बयान में कहा गया है कि विश्व ने देखा है कि हमास के आतंकियों ने लोगों को उनके घरों में घुसकर मारा। इस बीच CNN ने खबर दी है कि इन हमलों में इसराइल में 900 से अधिक और गजा में 600 से अधिक लोग मारे गए हैं। इसराइल ने चेतावनी दी है कि ये तो सिर्फ युद्ध की शुरुआत है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन आज से मोरक्को की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगी। वो G20 बैठकों के साथ साथ विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठकों में भी भाग लेंगी। बैठक में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकर भाग लेंगे। वित्त मंत्री श्रीमती सीतारामन और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास चौथी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्रीमती सीतारामन 11 से 15 अक्टूबर तक मराकेश में होने वाली अन्य बैठकों के अलावा इंडोनेशिया, मोरक्को, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और फ्रांस के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में तंजानिया के राष्ट्रपति डॉ सामिया सुल्हु हसन से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में कल शाम भोज का आयोजन किया। उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने तंजानिया के साथ भारत की सदियों पुरानी दोस्ती को याद किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि समान लक्ष्यों और चुनौतियों वाले वैश्विक दक्षिण के देशों के रूप में भारत और तंजानिया अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं और बहुपक्षीय संगठनों के सुधार सहित विकासशील दुनिया की प्राथमिकताओं की वकालत कर रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि इस यात्रा के दौरान भारत तंजानिया संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने से दोनों देशों के लोगों को लाभ होगा। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के अलशीपोरा गांव में कल रात सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। कश्मीर के अपर पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकवादी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से संबद्ध थे। इसमें से एक आतंकवादी कुछ महीने पहले कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। इलाके में तलाशी अभियान जारी है, ब्यौरे की प्रतीक्षा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव अगले महीने होंगे। पांचों राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की कल घोषणा की।
Mizoram, date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in two phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram in the for the two first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th, date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November.
इन पांच राज्यों में विधानसभा के 679 सीट और 16 करोड़ मतदाता हैं। इन चुनावों में करीब 60 लाख मतदाता पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में कहा कि इन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ये 2024 के आम चुनाव से पहले होने वाले अंतिम विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि निर्वाचन आयोग इन पांचों राज्यों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और गड़बड़ियों से मुक्त चुनाव सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने उचित, गलतियों से मुक्त और समावेशी मतदाता सूचियां बनाने पर विशेष बल दिया है। पांच राज्यों में 9 से 40 से अधिक सीमा चौकियां बनाई जाएंगी, जहां अवैध नकदी, शराब, रेवड़ियों और मादक पदार्थों को लाने ले जाने पर नियंत्रण किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि पांचों राज्यों में मतदाताओं को गलत तरीके से लुभाने पर रोक लगाने के लिए कड़ी निगरानी प्रणाली शुरू की जा रही है।
कमीशन ने एक प्रोफॉर्मा इशू किया था जिसमें ये बताने के लिए प्रस्ताव एक कंसल्टेशन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ की गई थी, एंड दैट प्रोफॉर्मा इज इन पब्लिक डोमेन। ये प्रोफॉर्मा बेसिकली ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मैनिफेस्टो में क्या करेंगे ये बताने का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ वोटर को ये जानने का अधिकार है कि ये कब करेंगे, कितना करेंगे और कैसे करेंगे।
गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज तेलंगाना के आदिलाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। बाद में श्री शाह सिकंदराबाद में बुद्धिजीवियों के साथ बैठक भी करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में बताया कि लोग राज्य में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और बीआरएस तथा कांग्रेस दूसरे और तीसरे स्थान के लिए चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोग राजनीतिक परिवर्तन को लेकर उत्सुक हैं और उन्होंने फैसला किया है कि भाजपा ही उनका विकल्प है। श्री रेड्डी ने कहा कि पार्टी की विभिन्न समितियां अपनी अपनी रिपोर्ट और अभियान योजना को अंतिम रूप देंगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की सूची को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य में 17 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मध्य प्रदेश में 230 सदस्यीय विधानसभा में आमतौर पर सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला रहा है। इस बार भी स्थिति अलग नहीं है। चुनावी तैयारियों के लिहाज से देखें तो भाजपा भी बढ़त बनाए हुए है। पार्टी ने अब तक 230 विधानसभा सीटों में से 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसे दलों ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेलों में शामिल खिलाड़ियों से आज नई दिल्ली में बातचीत करेंगे। वे खिलाड़ियों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में असाधारण उपलब्धि के लिए और भावी प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया है। भारत ने एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण सहित कुल 107 पदक जीते। पदकों की कुल संख्या के मामले में एशियाई खेलों में भारत का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस असाधारण उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि खिलाड़ियों के प्रेरक प्रदर्शन ने इतिहास रचा और देशवासियों के दिलों में गर्व की भावना भरी। कार्यक्रम में एशियाई खेलों में शामिल भारतीय खिलाड़ी, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी और राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप में हैदराबाद में कल न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड्स को 99 रन से हरा दिया। धर्मशाला में आज इंग्लैंड का सामना बांग्लादेश से तथा हैदराबाद में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला होगा। इस बीच भारतीय टीम कल अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ अपने दूसरे मैच के लिए दिल्ली पहुंच गई है। भारत ने रविवार को चेन्नई में अपने अभियान के शुरूआती मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया था। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस आज दोपहर बाद केरल के कोची में शुरू होगी। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला 4 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। ये जाने माने कृषि वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, नीति निर्माताओं, किसानों और उद्यमियों को एक मंच उपलब्ध कराएगी और शोध के निष्कर्षों तथा विचारों के आदान प्रदान का अवसर देगी। कृषि विज्ञान कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि खाद्य प्रणाली को सतत उद्यमों में बदलने के लिए वैज्ञानिक विचार विमर्श करना और भावी पीढ़ियों तक इसके लाभ पहुंचाना है। इसका आयोजन राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी कर रही है। केरल में यह आयोजन पहली बार हो रहा है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी नई दिल्ली में बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए आज प्रोटोकॉल लॉन्च करेंगी। ये आंगनवाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन के लिए विस्तृत कार्यक्रम होगा, जिसमें रेफरल, पोषण प्रबंधन और अनुवर्ती देखभाल पर ध्यान देना शामिल है। इस आयोजन में देशभर से महिला और बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। यूनिसेफ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और अन्य संगठनों के गणमान्य व्यक्तियों और विशेषज्ञों के भी भाग लेने की उम्मीद है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ हैं चंद्रिका जोशी।
धन्यवाद लवलीन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सत्ता का सेमीफाइनल तय, 5 राज्यों में 7 से 30 नवंबर के बीच होगा मतदान, नतीजे 3 दिसंबर को। दैनिक जागरण कहता है 16 करोड़ मतदाता चुनेंगे अपनी सरकार। अमर उजाला ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस कथन को बॉक्स में दिया है कि मुफ्त रेवड़ियों पर मतदाता को करना होगा जागरूक। राजस्थान पत्रिका का कहना है जागो, सोचो और चुनो। पत्र आगे लिखता है आचार संहिता लागू, शिकायत पर 100 मिनट में कार्रवाई। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की क्लाउडिया गोल्डन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। राजस्थान पत्रिका ने उन्हें महिलाओं की शक्ति बताया है। हरिभूमि के अनुसार हर कामकाजी महिला के दिल की बात समझने वाली प्रोफेसर को सम्मानित किया जाएगा। हमास और इसराइल के बीच चल रहे संघर्ष के बीच हिंदुस्तान ने 2 चित्र देते हुए लिखा है हृदय विदारक, 2 मुल्क 2 चेहरे मगर आंसू और पीड़ा एक। अयोध्या में श्रीराम मंदिर के तेजी से हो रहे निर्माण को सभी अखबारों ने दिया है। जनसत्ता कहता है अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सेवाएं दिसंबर से। अमेरिका के न्यू जर्सी में दुनिया के सबसे बड़े मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को राजस्थान पत्रिका ने सचित्र देते हुए लिखा है मंदिर के दरवाजे 18 अक्टूबर से खुलेंगे। अमर उजाला कहता है दुनिया ने देखा दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का वैभव। डाक से ई कॉमर्स निर्यात को प्रोत्साहन, दैनिक जागरण के अर्थ जगत पृष्ठ में है। पत्र के अनुसार छोटे निवेशकों को अब क्लियरेंस के लिए नहीं जाना पड़ता है कस्टम विभाग। दैनिक भास्कर ने साइंटिफिक रिपोर्ट्स की इस खबर को दिया है कि शास्त्रीय संगीत सिर्फ सुकून नहीं बल्कि शरीर की लय भी ठीक कर देता है। पत्र के अनुसार समूह में संगीत सुनने से रिश्ते मजबूत होते हैं।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली के नेताओं ने हमास के इसराइल पर किए गए हमलों की निंदा की। हमले में मरने वालों की संख्या 1500 हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन G20 की FMCG/BG के साथ ही विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए मोरक्को के मराकेश के लिए रवाना। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में अलशीपोड़ा में एक मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज तेलंगाना में चुनाव अभियान की शुरूआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेलों में शामिल खिलाड़ियों से आज नई दिल्ली में बातचीत करेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।